ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
नमस्कार। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कल जापान की राजधानी में संपन्न हो गई। क्वाड चार देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके सदस्य हैं। वर्ष 2024 में क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में अपने देश में ही आयोजित होने वाला है। शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रियों की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज हम इसी बैठक के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे और समझना चाहेंगे इसका महत्व क्या है, आने वाले दिनों में क्या सब परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए आमंत्रित हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। सर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि इस बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र में किन विषयों को प्रमुखता से उठाया गया है, और आम लोगों की भाषा में समझना चाहें तो क्या हैं इनके आयाम।
विदेश मंत्रियों की बैठक जो क्वाड के चार देश हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये आठवीं बैठक टोक्यो में कल हुई सोमवार को, और पिछली बैठक सितंबर 2023 में हुई थी न्यूयॉर्क में। उसके बाद अगर देखें तो इंडो पैसिफिक जो कार्यक्षेत्र है इस क्वाड का, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप का, उसमें कुछ सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कठिनाइयां बढ़ी हैं पिछले महीनों में सितंबर 2023 के बाद। और जैसे चाइना ताइवान को काफी थ्रेटन कर रहा है और चाइना का प्रेशर फिलीपींस के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, यूक्रेन युद्ध भी कहीं समापन की दिशा में नहीं जा रहा है, और वहां देखा कि शायद भारत का दृष्टिकोण और जो बाकी तीन देश हैं उनके दृष्टिकोण में थोड़ा सा फर्क है, वो ये है कि भारत ने एक शांति के दूत के रूप में कार्य करने का निर्णय किया है और कर रहे हैं, जिससे कि दोनों पक्ष, रशिया और यूक्रेन से भारत के संबंध अच्छे हैं और उन दोनों से वार्तालाप चल रहा है, जबकि बाकी तीन देश उधर ओपनली रूस के खिलाफ है। जो संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ, सबसे पहले अगर यूक्रेन की तरफ देखें तो बहुत चिंता चारों देशों ने जताई कि डीपेस्ट कंसर्न, कि जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन में उस पर बहुत उन्होंने चिंता जताई। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य में है कि रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड यूएन चार्टर, भारत ने भी अपने जो वक्तव्य है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ में, उनमें बार बार कहा है कि क्षेत्रीय अखंडता और सॉवरेनिटी ये बड़े मौलिक सिद्धांत हैं जिनके ऊपर पूरा विश्व में जो एक शांति और सुरक्षा का जो खाका है, जो आर्किटेक्चर है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, और इसका सब देशों को पालन करना चाहिए,
सम्मान करना चाहिए जी।
और दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ हमारे लिए और हमारे रीजन के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कहा गया कि स्टेडफास्ट कमिटमेंट टू ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और दूसरा कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर डोमिनेट करने का प्रयत्न न करे, और हर देश कोएशन किसी तरह के भी दबाव से वो मुक्त रहे।
यहाँ पर सर हम समझना चाहेंगे, दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियां हैं और दबावकारी गतिविधियां हैं, वह हमारे हितों को और वैश्विक समुदाय के हितों को किस रूप में प्रभावित कर रहे हैं, जिन पर चीन से आग्रह किया गया कि इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
देखिए, जिस तरह से 2010 के बाद या उससे पहले भी धीरे धीरे चीन ने पूरे साउथ चाइना सी पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयत्न किया है, उन्होंने कुछ आइलैंड्स को आम किया है, और धीरे धीरे वो दबाव दूसरे देशों पर बढ़ा रहे हैं जिनके इस एरिया में अपने क्लेम है, और बिल्कुल सही क्लेम है। और एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ द सी है, उन्होंने भी आर्बिट्रेशन अवार्ड फिलीपींस के तरफ दिया है कि चाइना का कोई क्लेम नहीं है। धीरे धीरे चाइना इस तरह का प्रयत्न कर सकता है कि जितना पूरे इंडो पैसिफिक में एशिया में व्यापार होता है करीब 40% जो ट्रिप्स हैं वो साउथ चाइना सी के द्वारा जाते हैं। तो धीरे धीरे चाइना ये प्रयत्न कर सकता है कि वहां पर जैसे कि इजिप्ट स्वेज कैनाल में कंट्रोल करता है वो कोशिश कर सकता है, चाहे वो कोरिया हो चाहे जापान हो भारत हो सब देशों को एक तो ये एक खतरा है। और अभी तो ये केवल ये कहता है कि जो नेवी के शिप्स हैं दूसरे देशों के वो बताएं कि हम कब आएंगे साउथ चाइना सी, पर धीरे धीरे वो और बढ़ा सकता है। और दूसरा चीज जो है कि एक इंटरनेशनल लॉ है, कुछ उसूल हैं, कुछ रूल्स हैं जो विश्व के सब देश उसका पालन करते हैं और इसीलिए देशों में डिफरेंसेस हैं वो कम होते हैं और उनको रिजोल्व कर लिया जाता है। पर चीन जो बिल्कुल निष्पक्ष यूएन है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उनकी बात भी वो नहीं मानेगा, तो ये सब बड़ी चिंता के विषय हैं। और भारत ने तो फिलीपींस के पक्ष में बिल्कुल क्लियरली, हमारे विदेश मंत्री गए थे मनीला महीने पहले, जो भी क्लेम है उसको हम सपोर्ट करते हैं और हम ब्राह्मोस मिसाइल भी हम लोग अपने जो क्रूज मिसाइल है बहुत ही अच्छा हथियार है उसको भी हम फिलीपींस को दे रहे हैं जिससे कि उनकी जो सुरक्षा की शक्ति है वो बढ़े।
यहां पर सर हम समझना चाहेंगे जो दूसरा बिंदु आपने कहा कि जिस पर गहरी चिंता जताई गई है यूक्रेन और रूस के युद्ध के साथ, भारत का पक्ष हमेशा रहा है कि युद्ध से कभी भी कहीं भी समाधान नहीं निकलता, इसे हम थोड़ा और समझना चाहेंगे कि हमारा जो मैत्री संबंध रूस के साथ है या हमारी जो विदेश नीति एक स्वतंत्र नीति दुनिया के अनेक देशों से स्पष्ट रूप से अलग जाती हुई दिख रही है पिछले कुछ वर्षों में, वह इस सम्मेलन में किस रूप में निकलकर सामने आया?
देखिए, भारत की शुरू से ही एक बहुत ही प्रिंसिपल्ड हमारी अप्रोच रही है कि जान माल का नुकसान ना हो, जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी युद्ध विराम हो और डायलॉग और डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा, राष्ट्रपति पुतिन को पब्लिकली कहा एससीओ मीटिंग में कि ये जो इरा है, ये जो समय है, जो काल है वो युद्ध का नहीं है, पर हर देश की जो सुरक्षा है उसका भी दूसरे देशों को सम्मान करना चाहिए, एक देश को इतना ना दबाएं कि उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। बहुत सारी चीजें हैं पर इस समय मेरा मानना है और विश्व के और भी लोगों का मानना है कि शायद अभी यूक्रेन और रशिया दोनों इस स्थिति में तैयार नहीं है कि वो गिव एंड टेक या कॉम्प्रोमाइज करके कुछ इस युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़े, कुछ शांति और समझौते की तरफ आगे बढ़े। अभी दोनों पक्षों का जो भी अपना पोजीशन है, जो कहना है, वो बहुत रिजिड है। तो मैं समझता हूं कि अभी तो शायद किसी शांति वार्ता का समय नहीं आया है। पर एक बात और जो सब दुनिया देख रही है कि अगर अमेरिका में श्री डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनकर आते हैं तो उनका नजरिया नाटो के प्रति भी कुछ दूसरा है प्रेसिडेंट बाइडेन से, और रशिया के प्रति भी कुछ दूसरा है। तो शायद अगर राष्ट्रपति ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो इस समस्या को सुलझाने में शायद कुछ सहायता मिले।
यहाँ पर हम कुछ और बिंदुओं की ओर आपको ले चलना चाहेंगे और जो मूल उद्देश्य है क्वाड का, जैसे कह लें कि विशेष रूप से देखेंगे अभी के समय को देखते हुए साइबर सुरक्षा को लेकर जिसका खतरा हम अक्सर सुनते रहते हैं, पूरी दुनिया में देखते रहते हैं, उसमें क्या सब महत्वपूर्ण पहल इस बैठक में हुआ, सागर में तार बिछाने का मामला हो या अन्य जो सामरिक साझेदारी के लिए सहयोग बढ़ाने की बात है, उन सब बिंदुओं पर क्या सब बैठक में चर्चा हुई?
ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे इंडो पैसिफिक के सभी देशों के लिए और खास तौर से जो आइलैंड स्टेट्स हैं पैसिफिक में, वो छोटी छोटी स्टेट्स हैं। और पीछे देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन का वहां पर प्रभाव कुछ बढ़ रहा है और इस दिशा में चार पांच देश इंडो पैसिफिक में, इसको मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस का नाम दिया गया है कि सब देशों को उजागर किया जाए कि भाई आपकी जो सिक्योरिटी है, आपका जो इकोनॉमिक फ्री जोन है, उस पर आप किसी तरह से अपने कंट्रोल करें। और उस तरफ कई बातें कही जा रही हैं, एक तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी हर जगह बढ़ाने का प्रयत्न क्वाड के देश सब मिलकर करेंगे, एक ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क का जिक्र भी हमारे विदेश मंत्री ने किया, और पलाऊ पैसिफिक आइलैंड में एक छोटा सा कंट्री है वहां पर उसकी बेस होगी, मॉरिशस में एक स्पेस बेस्ड क्लाइमेट वार्मिंग सिस्टम का भी स्थापना की जाएगी। और जैसा आपने कहा कि साइबर अटैक्स की तो देखिए संभावना पूरी दुनिया में बढ़ती ही चली जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब के आने के बाद ये चीजें बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं और सब देशों को मिलकर ये प्रयत्न करना चाहिए कि कैसे इस समस्या से निदान पाया जाए, आगे इसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें भी क्वाड देशों में हमारे चारों देश इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी में काफी आगे बढ़े हुए हैं और सब साथ मिलकर काम करेंगे और इंडो पैसिफिक के और देशों के साथ उसको साझा भी करेंगे जिससे कि उनकी सिक्योरिटी भी मजबूत हो। मैं समझता हूं कि इसका सभी देश इंडो पैसिफिक रीजन के इसका बहुत स्वागत करेंगे।
यहां पर सर हम ये समझना चाहेंगे कि क्वाड देशों के उद्देश्यों में एक अहम उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में हम सहयोग बढ़ाएंगे, तो अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई क्या बैठक में इस बार?
जी हाँ, मैं समझता हूँ कि इसमें क्लाइमेट चेंज की तरफ शायद ज्यादा रुझान रहा कि स्टॉर्म्स और इस तरह की घटनाएं जो बहुत जल्द एकदम, जहां पहले कहीं तूफान नहीं आते थे वहां तूफान आ जाते हैं और बहुत ही उसमें नुकसान होता है, तो अगर इसको मॉनिटर किया जाए तो काफी पहले वार्निंग मिल जाती है देशों को कि कोई स्टॉर्म आने वाला है या कुछ तूफान आने वाला है और वो अपने जान माल की सुरक्षा कर सकते हैं, तो इस तरफ मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस रहा।
यहाँ मानवीय आपदा के समय आपसी सहयोग बढ़ाने और एक दूसरे को सहयोग करने, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन जिस रूप से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को साफ दिख रहा है, वहां पर मानवीय आपदा में एक दूसरे को सहयोग करने का जो पक्ष है उसे भी हम क्या इसे जोड़कर देखें कि अंतरिक्ष सहयोग से हम उसको भी नियंत्रित रख सकेंगे या कम से कम नुकसान जो होता है उसको कम से कम कर सकेंगे?
जी हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए हमने जब सुनामी शायद 2003 में हुई थी उस वक्त देखा था कि किस तरह भारत ने एकदम इंडोनेशिया को, श्रीलंका और देशों में अपने पोत भेजे और बहुत सुरक्षा वहां भेजी, मतलब अमेरिका के शिप्स बाद में पहुंचे और हमारे पहले पहुंचे, तो सब देश मिलकर अगर काम करते हैं तो किसी भी आपदा हो, चाहे वो डिजास्टर हो, अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, उसमें सब देश अगर मिलकर काम करें तो जो भी भुक्तभोगी देश है या जहां पर आपदा है उसको बहुत सहायता मिलती है और मैं समझता हूं कि इसमें काफी काम भारत कर रहा है, जैसे डिजास्टर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स बनाना, उसमें भारत का तो बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है, हमारे प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि जो भी नई बिल्डिंग्स बने और कोस्ट के आसपास बने वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी हो और तूफान रेजिस्टेंट भी हो।
हम कुल मिलाकर इस बैठक के परिणाम को लेकर सार संक्षेप समझना चाहेंगे तो एक दो पंक्तियों में यह बैठक जो शिखर सम्मेलन होगा उससे पहले क्या भूमिका बनाकर विदा हुआ है?
देखिए जैसा हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि ये चार जो देश हमारे जो मिले टोक्यो में, ये प्रजातंत्र है, प्लूरलिस्ट सोसाइटीज हैं, ओपन इकोनॉमी है और इनका सोचने का ढंग और गवर्नेंस का ढंग मिलता जुलता है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है पूरे इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए और शांति के लिए और यह संदेश पूरे विश्व को टोक्यो से जाता है।
सर बहुत उपयोगी और सार्थक जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं के लिए दी है, श्रोताओं की ओर से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन पायल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।